SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 2002 गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के फौरन बाद गुजरात पुलिस ने मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया। सुश्री सीतलवाड़ श्री मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों की पुनः जांच की मांग कर रही मुख्य याचिकाकर्ता 83 वर्षीय जाकिया जाफरी की सह याचिकाकर्ता थी। ज्ञात रहे कि श्रीमती जाफरी के पति कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की दंगों के दौरान निर्मम हत्या कर दी गई थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गत शुक्रवार मामले को दोबारा शुरू करने के सभी रास्ते बंद करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने किसी गुप्त उद्देश्य के लिए मामले को जारी रखने की गलत मंशा का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रक्रिया इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कानून के दायरे में कार्यवाही की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के निर्णय के बाद सुश्री सीतलवाड़ और विपक्ष पर हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश बताया।
18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवाड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे।
सुश्री सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इकाई की स्पेशल रिपोर्टियर मेरी लॉलो ने ट्विटर पर लिखा कि वे गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिए जाने की खबरों से बेहद चिंतित हैं। तीस्ता नफरत और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करना कोई अपराध नहीं। मैं उनकी रिहाई और भारतीय राज्य द्वारा उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग करती हूँ। इसी दौरान ग्रुप 7 देशों की बैठक में जर्मनी के दौरे पर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने भारत में आपातकालीन समय की याद दिलाते हुए कहा कि आज से 47 साल पहले इसी समय डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था।
जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाकर डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है।
हाल में संपन्न हुए 3 लोकसभा और 7 विधानसभा उपचुनावों में पंजाब और उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार आजम खान का गढ़ माने जाने वाली रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने करीब 41,000 मतों के अंतर से अप्रत्याशित जीत हासिल की। आजमगढ़ सीट पर भी भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को 8,600 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की सबका विश्वास और सबका विश्वास कार्यशैली की जीत और परिवारवादियों की हार बताया।
ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है, ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दम्भी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है।
आजम खान ने इन नतीजों पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हुए कहा,
नतीजे कहाँ है, चुनाव था ही कहाँ, इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट भाई, और क्या वजह बताएं।
संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल के 77 वर्षीय सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमेल सिंह को हराकर बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जीतने के बाद उनके एक बयान ने भूचाल खड़ा कर दिया। इस बयान में उन्होंने अपनी जीत को संत भिंडरावाले की शिक्षाओं की जीत बताया।
पार्टी के वर्करां ने ते जिहड़ी सेध सानू संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने दित्ती है, अपना अमन पसंद तरीके दे नाल संघर्ष दे विच रहना, ये ओदी जित हुई है।
7 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा की 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने त्रिपुरा और झारखंड में 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 1 सीट पर तथा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस दिए जाने की वैधता को चुनौती दी है। डिप्टी स्पीकर ने इन 16 विधायकों को 27 जून की शाम तक जवाब देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय आज सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी दौरान शिवसेना ने हौसला दिखाते हुए कहा है कि 20 विधायक उनके संपर्क में हैं और उनके महाराष्ट्र लौटने पर बगावत के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद अग्निपद योजना के विरोध में स्वर थमने में नहीं आ रहे हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ को युवाओं को आक्रोशित करने वाली एक बेहद खराब योजना बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।
देखिए, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण काम हुआ है और इसका बहुत रिएक्शन, जितना दिखता है उससे ज्यादा रिएक्शन है। ये बहुत खराब तरीके से सोच के किया गया है और ये बेसिकली ये शो करता है कि देहात में और केंद्र सरकार में कितना फासला हो गया है।
इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।